ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति।
ओम शांति।
बहुत सुंदर सत्र अभी आप सबके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। जैसे कि आप सबको बताया गया कि हमारे यज्ञ के आदि रत्न बड़ी दादी और दीदी, जब भी दीदी शब्द बोलते हैं तो मनमोहनी दीदी जी का चित्र और चरित्र सामने आ जाता है, और जब भी दादी बोलते हैं तो बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि जी, जो हम सबके जीवन के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत रहे हैं, सच्ची मीरा बन करके रही। अनेक बातें हैं जिसे जानना और समझना हम सबको बहुत जरूरी है। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो साकार बाबा मम्मा से तो नहीं मिले, लेकिन कई ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने दीदी को भी नहीं देख पाए, कई ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने दादी जी को भी नहीं देख पाए, लेकिन उनकी जो धारणाएं हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनका जो चरित्र है, उनसे हम सब सीखते हैं। तो आज हमारे मध्य आदरणीय तुलसी भाई जी उपस्थित हैं। आपके अनुभव से हम सब जानेंगे कि कैसी थी दीदी, कैसी थी दादी, इस यज्ञ का कितना सुंदर सफल संचालन किया। बाबा और मम्मा के अव्यक्त होने के बाद दीदी और दादी ही यज्ञ का सफल संचालन किया। आज जो हम यज्ञ का इतना सुंदर स्वरूप देख रहे हैं, इतना विस्तार देख रहे हैं, इसमें ये दोनों महान विभूतियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आप सबकी तरफ से एक बार पुनः हमारे तुलसी भाई जी का एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे, और बाबा मम्मा दादियों की उपस्थिति का अनुभव करते हुए सर्वप्रथम तुलसी भाई से जानेंगे भाई जी से कि आपने मनमोहनी दीदी जी को पहली बार कहां देखा, और आपकी पहली मुलाकात दीदी के साथ कब, कहां और किस जगह हुआ, वो थोड़ा अपना अनुभव हमारे भाई बहनों को सुनाइए।
ओम शांति। मैंने पहले भी कई बार सुनाया है, जैसे भाई ने कहा कि अजमेर से ज्ञान मिला, तो अजमेर में रेलवे स्टेशन पे हम लोग दादियों से मिलने आते थे, क्योंकि आबू से दिल्ली जाने वाली ट्रेन अजमेर में काफी समय रुकती थी, उस समय लगभग आधा घंटा एवरेज हर ट्रेन रुकती थी, तो हमें दादियों दीदियों से मिलने का मौका मिलता था। और दादी दीदी मनमोहिनी जी से पहली बार जब हम मिले हैं तो ऐसे ट्रेन रेलवे स्टेशन पे ही मिले हैं, और कोई समय था कि हम लोग दरी ले जाते थे और स्टेशन पे क्लासरूम जैसा बना देते थे कई साइड पे प्लेटफार्म पे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम मैं मिला हूँ वो सिंपली दीदी से जस्ट हेलो हुआ है स्टेशन पे, और ओम प्रकाश भाई दीदी के साथ होते थे मोस्टली जर्नी में, रेलवे का कारोबार संभालते थे, और सुदेश बहन थे उसमें मेडिकल का वो संभालते थे, तो वो साथ में थे, और ओम प्रकाश भाई ने मधुबन का समाचार सुनाया। जब तक जो बहनें चली थी हमारे साथ टीचर्स बहनें, वो दीदी के साथ कुछ रूहान कर रहे थे और जो भोजन बना के लेके गए थे वो उनको दे रहे थे, तो जस्ट सिंपली परिचय हुआ एक एक का, और इतना ही फर्स्ट टाइम हुआ। और लेकिन दूसरी या तीसरी बार एक बार ऐसा हुआ कि बहनों ने स्टेशन पे फोन करके पूछा ट्रेन के बारे में, तो उनको बताया गया कि ट्रेन लेट है आधा घंटा, तो बहनें घर से निकली नहीं, जबकि हम अपने जॉब से टाइम पे आ गए, तो वो मौका मिला दीदी से, टाइम मिला क्योंकि हम दो भाई ही थे उस समय स्टेशन पर दीदी के सामने। तो दीदी ने हमारे बारे में पूछा, डिटेल तो मुझे इतनी याद नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या लक्ष्य है जीवन का, इस बारे में बात हुआ। और उसके बाद जयपुर में फेयर हुआ था, उसमें दीदी मनमोहिनी आए थे, तो भाई बहनों ने बोला, दीदी ये कुमार जो है इसने हड्डी सेवा कर दिए, हड्डी पापा को दे दिए सेवा में। तो दीदी ने मुझे याद है कहा कि अच्छा फिर तो तुम फरिश्ता बन जाना चाहिए, जब हड्डी दे दिया तो बाकी बचा क्या, तो फरिश्ता बन जाना चाहिए। तो इस प्रकार से चिटचैट हुआ, यही फर्स्ट टाइम का मैं कहूँगा अनुभव रहा
जी। तो इस तरह से आपका दीदी जी से प्रथम मुलाकात, और बहुत सुंदर दीदी का एक वरदान आपको मिला कि आपको फरिश्ता बन जाना चाहिए। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, हमारा तुलसी भाई जी जब से यहाँ समर्पित हुए मधुबन महायज्ञ में, तो अव्यक्त बाप दादा से सन्मुख मिलने का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपको। और जितने देर बाबा दादी जी के तन में रहते थे पूरा समय, क्योंकि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का आपका साली आपका सेवा था, तो एक बार अव्यक्त बाप दादा ने आपको वरदान दिया है कि आप सुखदेव आत्मा हो। ये बाबा ने वरदान दिया है सुखदेव हो, वो हम देखते हैं कि आपकी जो भी संबंध संपर्क में आते हैं सभी आत्माओं को आपसे सुख का अनुभव होता है। मेरा अगला प्रश्न है तुलसी भाई जी की, यज्ञ में दीदी और दादी की जोड़ी ये बहुत बेमिसाल जोड़ी रही है। अब तक हम दादियों के श्रीमुख से सुनते रहे, बड़े भाइयों के मुख से अनुभव सुनने को मिलता है कि दीदी और दादी का जोड़ी इतना बेमिसाल था कि एक प्रकार से जिस्म दो थे लेकिन रूह एक थे, आत्मा एक थी। ऐसे कैसे होता था, आप अपने अनुभव से हमारे भाई बहनों को सुनाइए कि इतना कैसे प्यार था, और ये ऐसी कहावतें क्यों कहा गया कि दो जिस्म और एक रूह एक आत्मा, ऐसी क्या इनके दोनों के अंदर तालमेल था जिसके कारण से यज्ञ में प्रचलन में आया कि दीदी और दादी की जोड़ी बेमिसाल थी।
लगभग सभी दादियों में आप देखेंगे, दीदी सहित सभी दादियों में ये विशेषता आप देखेंगे कि करण करावन हर करा रहा है, हम निमित्त हैं, बाबा करा रहा है। तो जब बाबा करा रहा है तो उनके द्वारा भी कराया तो बाबा ने कराया, मेरे द्वारा भी कराया तो बाबा ने कराया, ये फीलिंग्स हमेशा झलकती थी। और दादियां अपने आप में तृप्त थी, मानो उनको अपने पर्सनल के लिए कुछ नहीं चाहिए, तो जो भी हो रहा है सेवाएं हो रही हैं किस प्रकार से, तो दादियों ने सबको अप्रिशिएट करते हुए चलाया। तो दीदी कोई बात के लिए डिसीजन ले तो लगभग तो ऐसा होता था कि दीदी बोलेंगी अच्छा शाम को बताती हूँ, है ना, तो दिन में आपस में रूरान कर लेते थे। तो जब दोनों का डिसीजन सेम होता था तो सबको लगता था दीदी दादी एक ही हैं, है ना, और लगभग तो ओपिनियन सब आपस में जब रूरान करते हैं या पहले से मालूम होता है कि ये पार्टी आ रही है तो उस पार्टी के बारे में आपस में चर्चा होती है कि किस प्रकार की शिक्षाएं किस प्रकार के क्लासेस चलने चाहिए। तो जब एक मत हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सबके मुख से उसी एक प्रकार की बातें निकलते हैं। मान लो मैं जैसे भाई ने बताया कि मैं अजमेर से हूँ और जब मैं ऑडियो विजुअल सेवाओं में निमित्त बना, तो क्योंकि अजमेर जो कनेक्शन होता था वो दीदी मनमोहिनी के कनेक्शन का था, लेकिन जो ऑडियो विजुअल की सेवाएं थी वो दादी प्रकाशमणि के कनेक्शन में रही। तो दीदी से कुछ पूछेंगे तो बोलेंगी अच्छा तुम तो दादी के कनेक्शन वाला है ना, डिपार्टमेंट तुम्हारा दादी का है, तो दादी से पूछो। दादी से पूछेंगे तो अच्छा तुम तो दीदी के कनेक्शन से मधुबन में आया है, तो दीदी से पूछो। इस बीच में वो आपस में फाइनल कर देते थे क्या रेस्पॉन्स देना है ना। तो लगभग यही होता था कि दोनों का ओपिनियन एक ही है, और जब अपन एक ही राह पर चल रहे हैं, हमारा यज्ञ एक ही राह पर चल रहा है, तो एक ही प्रकार की लाइकिंग्स होती है ना, एक ही प्रकार का सोच होता है, तो लगभग वही सोच दोनों का था आपस में एकमत का कारण है ना, तो एकमत के ये विशेषता रही। और बाद में तो इंट्रोकॉम सिस्टम हो गया कि दीदी के पास और दादी के पास सुपर फोन बोलते थे हम लोग, सुपर फोन था वो, जैसे तुरंत ही जवाब दे सकें। कोई कई ऐसी बातें होती हैं जो तुरंत रिस्पांस देना है तो दीदी दादी से बात करके कि मैंने इनको ये बोला है या मेरा मत ये है, तो दादी को मालूम होता दीदी ने ये बोला है तो ऑटोमेटिकली दादी भी उसमें सहमति जताएंगी। और दोनों को भी ये था कि अगर दीदी ने कहा है तो उससे भी बाबा ने करवाया है और उसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है ना। जैसे साकार मुरली में बाबा कहते हैं ना कि अगर ब्रह्मा बाबा से कुछ गलत भी हो गया तो शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल हैं, तो दोनों का रिस्पॉन्सिबल तो बाप दादा ही थे, तो इसलिए कोई डर की बात नहीं थी या कोई विरोध करने वाली बात नहीं थी कि दीदी ने ऐसे क्यों बोल दिया कि दादी ने ऐसे क्यों बोल दिया, उस प्रकार की कोई बात नहीं थी। और आज के समय में फिर भी ना फास्ट जमाना है ना, हर एक को अगर आज के समय में मोबाइल पे जवाब देना है तो बहुत जल्दी क्विक डिसीजन होता है, लेकिन उस समय इतना कुछ होता नहीं था। मोस्टली तो पोस्ट से ही जवाब देना होता था, उसके बाद एक सिस्टम आया टीपी टेलीप्रिंटर, तो जो अहमदाबाद में टाइप करते थे वो यहाँ लिखित होती थी और उसका जवाब आपस में राय करके भी दे सकते थे। तो यहाँ एसटीडी सिस्टम माउंट आबू में नहीं था जो डायरेक्ट फ़ोन करें। लेकिन दूसरा ये कि दादियाँ चाहे दीदी चाहे दादियाँ ऑलवेज अवेलेबल थे, हम सब के लिए भी अवेलेबल थे, तो आपस में एक तो एक दूसरे के लिए अवेलेबल थे ही थे, तो एक लिए एक मत हो ही जाता था, सहज होता था, कोई इस प्रकार से उनको एक्स्ट्रा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता था।
बहुत सुंदर बात बता रहे हैं हमारे तुलसी भाई जी कि कितना आपस में दोनों का कम्युनिकेशन था। दीदी ने कुछ कहा तो दादी ने हाँ कहा और दादी ने कुछ कहा तो दीदी ने हाँ कहा, और इसीलिए हम देखते हैं यज्ञ की खूबसूरती है जो अब तक ये सुंदर तरीके से चल रहा है। आपस में इतना प्यार, आपस में इतना स्नेह, बाप दादा की श्रीमत प्रमाण सब कार्य करते रहे। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि आप इस सभा में से कितने लोग हैं जिन लोगों ने दीदी को देखा था, मनमोहनी दीदी को, हाथ उठाइए, जिन लोगों ने देखा है दीदी को, मनमोहनी दीदी को। बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं। तो ये जो जनरेशन है बाद की जनरेशन, तो इसलिए हम सबको दीदी के चित्र और चरित्र को भी जानना जरूरी है कि जुलाई मास 28 जुलाई जो बीता अभी, यही जो है दीदी के अव्यक्त महाअव्यक्त दिवस स्मृति दिवस के रूप में दीदी जी का मनाया जाता है, और ये 25 अगस्त जो है बड़ी दादी जी का है। इसलिए हम सब थोड़ा जानना चाहते हैं दीदी जी के बारे में कि वास्तव में दीदी की बहुत बड़ी भूमिका यज्ञ में रही है। भले जितना हम नाम दादी जी का सुनते हैं उतना दीदी जी का नाम नहीं है, लेकिन रोल बहुत बेमिसाल रहा है। इंटरनली सारा कारोबार जो है वो दीदी क्या करती थी, क्योंकि दीदी लौकिक में माता रही तो अनुभव भी दीदी जी को काफी रहा है लौकिक जीवन का, और बाबा के बहुत अंग संग दीदी काफी रही है। एक चीज और जानने में मुझे जानने की जिज्ञासा है कि दीदी जी का जो रोल है वो यज्ञ में बहुत महान रहा है, और खासकर जैसे मैंने बताया कि प्रशासनिक व्यवस्था में इंटरनली जो कारोबार है, क्योंकि दादी जी तो कई बार सभाओं में प्रोग्राम में एक चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के रूप में प्रस्तुत होती थी, लेकिन अंदर का कारोबार, किचन का कारोबार, डिपार्टमेंट का कारोबार या अंदर की जो और कोई प्रशासनिक जो बातें हैं उसमें दीदी जी का कितना रोल आप देखते थे, जैसे अभी हम देखते हैं और दीदियां अभी वर्तमान समय दिखता है, ऐसे दीदी जी का उस समय जो आप 81 में आप मधुबन में आए और ये 2-3 साल दीदी जी का रोल आपने देखा प्रैक्टिकल में, क्या भूमिका थी दीदी जी का यज्ञ में?
ऐसा था कि आबू रोड से जो ट्रेन दिल्ली साइड को जाती है, हाँ, उसका ऐसे तो भले दीदी दादी एकमत थे लेकिन फिर भी क्विक रेस्पॉन्स के लिए तो सहज करने के लिए सिस्टम था कि जो ट्रेनें दिल्ली साइड जाती हैं तो वो उसके देख रेख दीदी मनमोहिनी के हाथ में थे। अच्छा। और आबू रोड से जो ट्रेनें अहमदाबाद बॉम्बे साइड साउथ साइड जाती हैं उनकी देख रेख दादी प्रकाशमणि के हाथ में थे। और ऐसे ही मधुबन में मधुबन में जो गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन वाली चीज़ें हैं वो दादी प्रकाशमणि जी के हाथ में थे, और जो जैसे ऑडियो विजुअल सिस्टम ऑफिस साइट जिन जहाँ ऑफिस शब्द आता है वो दादी प्रकाशमणि जी के हाथ में था, और जो रोटी कपड़ा मकान जिसको हम सहज शब्दों में कहें लॉजिंग बोर्डिंग का डिपार्टमेंट दीदी मनमोहिनी जी के, क्या मेनू डिसाइड करना, क्या भोजन बनेगा, कौन वहाँ सेवादारी हैं, किचन में कौन कौन सेवादारी हैं, या मकान संभालने वाले कौन कौन हैं, कौन सा मकान कितना बड़ा है और वहाँ कौन कौन आ सकते हैं, ये गेस्ट आ रहे हैं तो वहाँ कौन कहाँ ठहरे, इस चीज़ की फाइनलाइज दीदी मनमोहिनी जी के द्वारा होता था। तो अधिकतर इस प्रकार से कारोबार चलता रहा, और दीदी मनमोहिनी ऐसे तो दादी जो भी कहती थी तो दीदी से पूछ के करती थी, क्योंकि यज्ञ में मामा के बाद जो प्रशासन था वो दीदी मनमोहिनी जी के हाथ में था। ये तो दादी का अपना रोल था, बाबा का दादी जी के लिए भी बहुत प्यार रिस्पेक्ट रहा है, दादी जी को बाबा ने बहुत सेवाओं में आगे किया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो उसको शब्द बोलेंगे,
हाँ।
तो जब तक बाबा थे मामा के बाद दीदी मनमोहिनी जी का ही नाम आता है
जी,
तो ध्यान रखते थे दादी। बाकी दीदी का विशेषताएं थी कि कोई भी सेवादारी रखना है तो मैंने एक बार दीदी को पूछा था कि दीदी आपको कैसे मालूम कि व्यक्ति यहाँ फिट होगा, तो दीदी ने बोला कि कोई आता है नया तो मैं दो चार दिन उनको फ्री छोड़ है, या तो वो जहाँ उसकी फ्रेंडशिप होगी मिलनसार संस्कार होंगे वहाँ जाएगा, या तो जो उसका प्रोफेशन है जो उसकी हॉबीज हैं उस प्रकार का कारोबार में वो जाएगा, तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति यहाँ फिट होगा वहाँ सक्सेस होगा। तो इस प्रकार से वो सेवाएं देती रही, और जब मैं मधुबन में मुझे दीदी ने बुलाया तो सबसे पहले दूध के भंडार में सेवा मिली, और मुझे याद है कि दीदी मनमोहिनी जब मुरली क्लास में जाते थे तो अधिकतर अगर बहुत लेट ना हो गए हों तो किचन साइड से चक्कर लगाते हुए जाते थे, और क्लास में जाने का उनका फिक्स था ही टाइमिंग, टीचर से पहले पहुंचना है क्लास में, ये उनकी विशेषता थी
जी 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 जी। तो दीदी की अनेक विशेषताएं सुनने को मिल रहा है। मैंने सुना था हमारी वरिष्ठ जो महारथी कई फिट कराने में दीदी जी का ही रोल है। एक बार सूरज भाई जी से मैं पूछा था तो भाई जी ने भी कहा था कि मेरे को जो समर्पित कराने के निमित्त बने वो दीदी जी बनी थी। ऐसे आदरणीय राजू भाई जी, ऐसे कई महारथी हैं जिनको यज्ञ में समर्पित कराने में हमारी परम आदरणीय राजयोगिनी मनमोहिनी दीदी जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो इस तरह से रोल यज्ञ में दीदी जी का रहा। ऐसा सुनने में आता है तुलसी भाई जी की जब भी दीदी किसी से मिलती थी तो किसी को मिलते समय सामने वाले के मन में क्या संकल्प चल रहा है वो भी परख लेती थी, और कभी कभी दीदी बोलती थी अरे भाऊ आपके मन में ये चल रहा है। तो दीदी की ऐसी क्या बात थी कि किसी के मन में क्या संकल्प चल रहा है, क्या विचार चल रहा है वो भी दीदी जान जाती थी। ऐसे मैंने कई भाई जो पुराने भाइयों से सुना हूं कि दीदी मिलते समय ये बोलती थी कि तुम्हारे मन में ये संकल्प चल रहा है, तुम्हारे मन में विचार चल रहा है, और वो दीदी परख लेती थी।
ऐसा है, ये तो प्योरिटी की कमाल है। थोड़ी देर पहले सुमन बहन प्योरिटी के बारे में क्लास करा रहे थे
जी।
तो मैं ये कहूँगा कि जितना हमारा प्योरिटी का लेवल बढ़ता जाता है उतना उतना ये परख शक्ति हमारी बढ़ती जाती है, और शक्तियाँ तो आती ही हैं लेकिन ये परख शक्ति जो है ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है, और उस कारण से क्या जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी उस समय उसके मन में समझो उसने कुछ गलती की है तो उसको वो गलती उभर आती है। जैसे कहते हैं ना कि देवियों के मंदिर में जाते हैं तो रियलाइजेशन बढ़ जाता है, ऐसे पवित्रता जिनके जीवन में है तो स्पिरिचुअल लेवल अगर हाई है तो सामने वाले की जो रियलाइजेशन पावर है उसको बोले बिना ही वो अपनी गलती महसूस करना शुरू कर देता है। तो चाहे अच्छी चीज़ है तो भी उसको खुशी होती है, और उससे कोई गलती हुई है तो वो उसको मन में खाती है, तो ये प्यूरिटी का लेवल के कारण मैं समझता हूँ होता है। और यही चीज़ दीदी मनमोहिनी जी के जीवन में हमने पाई कि दीदी का जो बाबा से कनेक्शन था और दीदी का जो प्यूरिटी का लेवल था वो झलकता था, चाहे वो याद में जब वो योग कराते थे उस समय भी झलकता था, चाहे वो पास हो रहे हैं पांडवों ने कोर्ट यार्ड में तो भी झलकता था। और सबसे बड़ी बात है कि जब आपको मालूम है कि ये व्यक्ति गलती करके आया है तो भी उससे नफरत न करके उनके प्रति शुभ भावना रख के उनको शिक्षाएं देना, और केवल इतना ही पूछना, भाव कुछ गलती की क्या, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला बता देता है दीदी आज ऐसा ये हो गया है, तो अच्छा ध्यान रखना यार, ज्यादा कुछ ऐसा है तो अच्छा पापा के रूम में बैठ के थोड़ा योग कर लो, है ना। तो इस प्रकार की शिक्षाएं भी साथ में थी, और जो मैंने कहा कि प्यूरिटी के कारण उनको उनके सामने जो भी आता उनकी परख शक्ति बहुत हाई थी। और ये भी होता था कि समझो मैं कैसे चल रहा हूँ, मैंने कैसे बाल बनाए हैं ना, उससे भी ऑटोमेटिकली दीदी परख लेती थी कि इसका जो लेवल है कैरेक्टर लेवल वो इस लेवल इस प्रकार का है ऑटोमेटिकली। जैसे थोड़े समय पहले संतोष दीदी सुना रहे थे दीदी मनमोहिनी जी के बारे में कि वो दीदी ने उनकी ड्यूटी लगाई कि यहाँ से जो भी बहन पास होती है तो नॉर्मली बहनें पल्लू ऐसे लेके देती हैं, लेकिन दीदी ने कहा जिसका भी एक पल्लू ऐसे है उसको घुमा के यहाँ से सेट करना है, ये तुम्हारी ड्यूटी है, चाहे कोई भी हो, चाहे दीदी हो दादी हो, अगर उनका पल्लू ऐसे है, नहीं है तो ऐसे करना है, तुम्हारी ड्यूटी है। तो कुछ चीजें दीदी की ऐसी होती थी अगर दीदी ने कहा है तो सामने वाले की हिम्मत नहीं होती थी उसके बाद में उसके बारे में और कुछ जानना कि ऐसे क्यों ना, तो ऑटोमेटिकली वो करना शुरू ही कर देता है ना। तो ये चीज के कारण जो दादी की दीदी का अथॉरिटी वाला बोल होता था वो अथॉरिटी वाला होता था, क्योंकि एक तरफ तो शुभ भावना है, दूसरी तरफ बैकबोन बाबा है, और तीसरी तरफ कि उनकी प्यूरिटी का लेवल जो है, तो ऑटोमेटिकली ये सहज हो जाता था कि दीदी किसको कुछ बोले और वो ऑटोमेटिकली करना शुरू कर दे, या तो दीदी अगर पास भी हो जाए तो संभल के।
और जी तो दीदी का इतना प्रभाव था यज्ञ में कि लोगों को पता चलता था कि दीदी हर बात को नोट करती थी, कैसे साड़ी का पल्लू रखना है वो भी दीदी नोट कराती थी, सिखाती थी। तो इस तरह से दीदी की दिनचर्या और इस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था थी। अंत में दीदी के बारे में दो बातें मेरे मन में और है तुलसी भाई जी, फिर दादी के बारे में सुनेंगे। दीदी जो है ऐसा मैंने सुना है कि अमृत बेला रोज योग करने या योग करने आती थी तो स्नान करके आती थी। ज्यादातर हम जैसे अनेक लोग हैं जो कभी ऐसा तो सिस्टम नहीं है कि भाई स्नान करके आ, लेकिन दीदी के बारे में ऐसा सुनते हैं कि सुबह उठते ही स्नान करके ही योग करने आती थी या योग कराती थी। और दूसरी बात, दीदी लास्ट दिनों में एक स्लोगन बहुत पक्का कर लिया था और सबको पक्का कराती थी जिससे भी मिलती थी। ये दीदी के समय का स्लोगन बहुत प्रचलन में आया है, अब घर जाना है, ये दीदी का बहुत स्लोगन पक्का स्लोगन था। जब भी किसी से मिलती थी बात करती थी खुद भी उसको पालन करती थी, अब घर जाना है अब घर जाना है। ये स्लोगन का कितना प्रभाव था, और दीदी के बारे में जो सुनते हैं कि सुबह फ्रेश होकर के वो नहा करके आती थी और आकर के क्या योग कराती थी या योग करती थी, वो थोड़ा अपने आंखों देखा हाल हमारे भाई बहनों को सुनाइए।
जैसे प्यूरिटी की शब्द मैंने बोला, ऐसे शुद्धता भी एक प्यूरिटी का भाग है। तो जब कोई सो के उठते हैं और जब हम तुरंत सामने आ जाते हैं क्लास में, या तो ऑटोमेटिकली चेहरा फर्क तो पड़ता है, तो दीदी सवेरे रुखा स्नान जिसको बोलते हैं ना, रुखा स्नान करके आते थे और प्रॉपर उस कारण से क्या होता था, ऑटोमेटिकली साड़ी बांधना ये सब ऑटोमेटिकली प्रॉपर होता था और योग कराते थे। हिस्ट्री हॉल में जब मैंने उनको दीदी को योग कराते देखा है, बहनों की साइड में दीदी मनमोहिनी योग कराते थे, भाइयों की साइड में दादी प्रकाशमणि अमृतवेला का योग कराते थे, तो जो दीदी का बाबा से प्यार है वो झलकता था। और उसके बाद भी जो मान लो मैं वहाँ से अगर पास हो रहा हूँ और मैं अभी तक हॉल में नहीं गया हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे आकर्षण होगा तो मैं हॉल में जाऊं। और उसके बाद भी दीदी का जो चलना होता था, जैसे योग युक्त अवस्था वाली बात होती थी, तो दादी दीदी फ्रेश होके तो आती थी, लेकिन उसके बाद योग के बाद दीदी फिर से चाय लेके थोड़ा सा कुछ स्टडी करके फिर स्नान करके फिर चक्कर लगा के क्लास में जाते थे। उन दिनों क्लास जल्दी शुरू होता था, अगर 6:15 बज गए तो जो 6:45 का अभी रिकॉर्ड बजता है वो अभी तक, अभी तो क्या करते हैं भाई बहने अधिकतर योग के बाद सो जाते हैं, फिर 6:45 का रिकॉर्ड पे उठते हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड एक्चुअली उस प्रकार से नहीं है, वो रिकॉर्ड क्लास में आने का निमंत्रण के लिए है। 3:30 बजे उठने का रिकॉर्ड बजता है, 4 बजे योग में आने के लिए रिकॉर्ड बजता है, और इसी प्रकार 6:45 बजे का रिकॉर्ड क्लास में मूल क्लास में आने के लिए बजता है, और 6:45 से 6:15 योग होता था, 6:45 से 7:30 बजे तक 7:45 बजे तक मूली चलती थी। उस समय मूली लंबी चलती थी, दीदी दादी उनको ढंग से एक्सप्लेन भी करते थे, या कोई दीदियां दादियां बाहर से आई हैं वो बीच में उनका अनुभव भी होता था। तो 6:45 बजे क्लास में आने का टाइम होता था और 6:45 बजे तक दादी आ जाती थी। मुझे याद है कि कभी 6:20 हो गए हैं तो दादी कहते थे तुलसी जल्दी चलो लेट हो गए। तो इस प्रकार से दादी मेडिटेशन हमें जब क्लास चलता था या स्टडी हॉल में क्लास चलता था ऐसे होता था। और तो दीदी की दिनचर्या में वो था कि टाइम पे पहुंचना, और उसके बाद मूली क्लास के बाद तुरंत ही दीदी पत्र लिखते थे। पत्र दीदी के पास कोई जाता था तो पहले उनसे रूहान करते थे, जैसे कोई फॉरेनर्स का सीजन है तो मूली के बाद तुरंत ही फॉरेनर्स दीदी के पीछे पीछे उनके रूम में पहुंच जाते थे, तो चिट चैट थोड़ा करते। उसके बाद 9 बजे से पहले कुछ पत्र पूरे करने होते थे, तो 9:30 बजे करीब पोस्ट ले जाने वाला पोस्ट ले जाता था, तो इसके लिए लगभग कोशिश होती थी दीदी की जो पत्र लिखने हैं वो 9:15 बजे तक पूरा हो जाए, ताकि बाद में इश्यू दादी उन पत्रों को एनवलप में डाल के एड्रेस लिख के 9:30-10 बजे से पहले पोस्ट में भेज सके ऐसा। तो दीदी पत्र लिखते थे, पत्र लिखने के बाद नाश्ता होता था, नाश्ते के बाद दीदी थोड़ा आराम करते थे जी। और लगभग 11 बजे लच्छू दादी फिर से उनको जगा के या हम याद करा के चाय लेके जाते थे 11 बजे, और दीदी को चाय वगैरह दे के उसके बाद उनका दिन और जो मिलना जुलना होता था वो चलता था, या कभी 10:30 बजे ही ये दिनचर्या मिलने जुलने की दिनचर्या उनकी शुरू होती थी। दीदी अधिकतर किसी को टाइम देती तो बोलती 10:30 बजे का ट्रैफिक कंट्रोल बजेगा ना तो आ जाना
जी।
तो इस प्रकार से दिनचर्या थी दीदी की सवेरे की मॉर्निंग की। तो अधिकतर जो सवेरे का टाइम है उनका स्पिरिचुअल उन्नति के लिए रहता था, और जब जो भी उनसे मिलता भी था तो उनके भाव से पूछते थे, अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो बाद में करें, कोई काम से भी गया कोई बात ऐसे करने के लिए गया तो अगर 8 बजे से पहले कोई चला गया तो अगर जरूरी नहीं हो तो बाद में करें, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला व्यक्ति लगभग ये ऐसे करता था। तो इस प्रकार दीदी का, और जो आप कह रहे हैं कि अब घर जाने का है, तो एक समय ऐसा आया 81 या 80 में कि UN में जो सेवाएं शुरू हुई वो अच्छी तरह चलने लगी, तो दीदी को एक तरह से लगा कि हमारी सेवाएं UN तक पहुंच गई हैं, तो जो मेरा कर्तव्य था वो पूरा हुआ
जी।
तो उसके बाद दीदी को लगा कि अब समेटना शुरू करना है, अब घर जाना है, तो उस समय ड्रामानुसार वो गीत भी उनकी प्रेरणा से बना। और उसके बाद जब भी मैं दीदी से कुछ रिकॉर्डिंग करवाने के लिए जाता था, क्योंकि उस समय कोई कोई सेंटर पे भट्टियाँ रखते थे, तो दीदी को वो चाहते थे कि दीदी उनके भाई बहनों को कुछ संबोधित करें, क्योंकि वीडियो कॉल वगैरह तो नहीं होता था, तो कैसेट रिकॉर्ड करके हम लोग भेजते थे उन दीदी के द्वारा, 10 मिनट या 5 मिनट का कैसेट रिकॉर्ड करके भेजते थे। तो दीदी लास्ट में बोलती कि अच्छा मिलते समय तो ओम शांति बोला, अभी विदाई के समय अब घर जाना है
जी।
तो ये दीदी का मोस्टली लास्ट के जो 83 आते आते ये शुरू हो गया
जी। बहुत अच्छी बात सुनने और जानने को मिल रहा है कि कैसे दीदी जी जो है अपनी दिनचर्या में बहुत एक्यूरेट रहती थी। और बहुत एक और नई बात जानने को मिली कि जो 6:45 का जो गीत बजता है वास्तव में वो क्लास में आने के लिए बजा करता था, लेकिन अभी लोग उसको यूज करते हैं चलो उठ के तैयार हो जाओ, ताकि अब 6:30 कई जगह 7 क्लास होता है, तो पहले का जो टाइम था वो 6:15 का क्लास था मुरली क्लास, और उसके कारण से लोग जो है 6:45 तक तैयार होकर के मुरली सुनने आया करते थे। अब हम सब दादी जी के बारे में सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तुलसी भाई की दादी जी का, जब भी अगस्त माह आता है तो जैसे जनवरी में हम सब ब्रह्मा बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं, जून में मम्मा की बहुत याद आती है, ऐसे ही अगस्त माह आते ही अनायास हम सबको अपनी प्यारी दादी बड़ी दादी जी का बहुत 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 याद एक प्रकार से सताने लगती है। और अनेक लोग बाबा के बच्चे हैं जिन लोगों ने दादी के प्यार को दादी के स्नेह को देखा है अनुभव किया है। अगस्त माह में आप दादी जी को किस रूप में याद करते हैं, कैसा देखते हैं अगस्त माह आते ही दादी जी के स्मरण को?
ऐसा है ड्रामानुसार जो मेरी सेवाएं हैं वो ऑडियो विजुअल से कनेक्शन है
जी,
तो ये भी एक चांस होता है या एक कारण बनता है दादी जी को याद करने का या दीदी को याद करने का। तो जैसे ही 1 अगस्त शुरू हुआ तो हमको बताया कि इस बार इधर अपने दादी के बारे में क्या नवीनता भेज रहे हैं, तो मुझे लगा कि इस बार हर रोज कि दादी जी की आवाज़ में रिकॉर्डेड मुरली जो है वो भेजी जाए ऑडियो। तो टेलीग्राम चैनल है और फेसबुक चैनल है, ऐसे यूट्यूब चैनल हैं, तो उसमें रोज़ एक दादी जी की वॉइस में मुरली भेज देते हैं, क्योंकि बाबा तो मुरलीधर है ही है, लेकिन बाबा के बाद दादी जी जो मुरली सुनाते थे उसमें वही भावनाएं होती थी जो बाबा ने अपने समय पर जो मुरली सुनाई हैं। भले दादी पढ़ के सुनाती थी मुरली, लेकिन किसी को भी लगता नहीं था कि दादी मुरली पढ़ रही हैं, जो अभी अपन फील करते हैं कि, और अभी तो कई कोई भाई बहन कमेंट भी करते थे दीदी ये नहीं लिखा है वो लिखा है क्योंकि उनके हाथ में भी मुरली होती है। तो उस समय तो ऐसा नहीं हुआ करता था, तो दादी जी जो मुरली सुनाते थे वो विशेष जैसे बाबा के प्रवाह चल रहा है ऐसा, तो अभी भी वो दादी जी की वॉइस में मुरली सुनने का मजा अपना है। तो मोस्ट मुरली को हम प्ले करते हैं, और जो विशेष होती हैं तो जैसे राखी बंधन था तो राखी के दिन की जो मुरली दादी के ने मुखारबंद सुनी वो भेजी गई। तो इस प्रकार फेसबुक चैनल है, पेज है फेसबुक पेज में दादी प्रकाशमणि, तो आप अगर उस फेसबुक में पूरा देखेंगे तो आपको दादी जी क्या थी वो पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मोस्टली एक्शन पोज जितने भी हैं दादी के उसमें हैं। ऐसे ही बीके दादी प्रकाशमणि नाम से यूट्यूब चैनल है, उसमें भी आप दादी जी के वॉइस में कुछ मुरलियाँ या दादी जी के कुछ क्लासेस सुन सकते हैं, या तो फिर दादी जी के बारे में जो औरों ने सुनाया है वो आप सुन सकते हैं। तो मुझे याद है कि जैसे जनवरी माह की बात कही आपने, तो दादी मनोहर इंद्रा जब बाबा के बारे में सुनाते थे साकार बाबा के बारे में, तो मेरे लिए वो एक जैसे कमेंट्री होती है ना, बहनें कमेंट्री करके योग कराती हैं तो आप विजुअलाइज करते हैं जो शब्द होते हैं, तो जो मनोहर दादी जी साकार बाबा के बारे में सुनाते मैं उसको विजुअलाइज करता रहा। तो एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा कि मैंने बाबा को मिस नहीं किया, साकार बाबा का साथ मैंने सर्व जो संबंध है वो अनुभव कर लिए हैं अभी भी।
इस तरह से हमारे तुलसी भाई जी बहुत गुप्त सेवा भी करते हैं, जिसे बताया आपने दादी जी की आवाज़ की जो रिकॉर्डिंग है सब डालते हैं। और एक चीज़ और जो आपने देखा होगा, व्यक्त बाप दादा कई बार मुरलियों में ड्रिल कराते हैं, तो जितने भी ड्रिल हैं वो भी हमारे तुलसी भाई जी ने सारा यूट्यूब में डाले हुए हैं अलग से कलेक्शन करके, तो ऐसे ही ये गुप्त सेवा भी बाबा का करते रहते हैं। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ आप इस सभा में से बड़ी दादी को किसने किसने एक बार भी नहीं देख पाए, नहीं देख पाए? अच्छा, काफी लोग हैं। तो 2007 में हमारी बड़ी दादी जी अव्यक्त हुई, उसके पहले अनेक आत्माएं हैं जो दादी जी के सानिध्य का अनुभव किए हैं और वो अमिट छाप है। और मेरा अनुभव ये है कि जिसने भी एक बार बड़ी दादी को देख लिया, बड़ी दादी का प्यार पा लिया, समझो ऐसा लगता था जैसे हमने साक्षात मम्मा बाबा को देख लिया, माता पिता को देख लिया, ऐसी अनुभूति दादी जी से होती थी। दादी जी को वैसे तो सभी से बहुत प्यार था, लेकिन दादी को कई बार एक शब्द कहा करता दादी के लिए कि कुमार का दादी, कुमारों की दादी। यहाँ कोई कुमार बैठे हाथ उठा, कुमार लो, अच्छा थोड़े हैं, तो दादी को कुमार का दादी कहते थे। मैं जानना चाहता हूँ तुलसी भाई, आप भी कुमार जीवन 21 साल की उम्र में आप ज्ञान में आए और बाबा घर में आ गए, इतने सालों तक दादी जी की पालना लिए, दादी जी विशेष कुमारों को ही इतना प्यार क्यों करते थे?
तो किसी को ईर्ष्या है क्या? ऐसा है कि दादी जी को वैसे तो सबके प्रति प्यार रहा है, सबकी इम्पोर्टेंस रही हैं, और दादी जी लगभग सभी को उनको सूटेबल राय भी देती रही हैं कि अगर आप अदर कुमार हैं और या आप उसमें भी आप अकेले चलते हैं ज्ञान में, या तो परिवार सहित ज्ञान में चलते हैं, तो जिनकी जैसी जैसी परिस्थितियां हैं या जिस प्रकार से हैं, उनको दादी स्वयं उनके अनुसार उनको सूट करे वो राय देती रही हैं। तो विशेष कुमार का के बारे में शब्द आपने पूछा है, देखिए लगभग बहनों के बारे में कहा जाता है कि कुमारी बड़ी होगी तो घर का काम करेगी और बाद में बड़ी होगी तो मैरिज करेगी, एक दिन दूसरे के घर चली जाएगी। तो दादी जी को रहता था ठीक है भाई, उनको तो दूसरे के घर जाना ही था, तो बाबा के घर में आ गए, तो उन्होंने तो त्याग तो किया है लेकिन उस प्रकार का त्याग नहीं जो जितना कुमारों का त्याग है। कुमारियों के भी लिए दादी कहती कि अच्छा कुमारी हैं आजकल तो जॉब करती हैं, मोस्टली तो समर्पण होना ही चाहिए लेकिन कुमारी हैं जॉब करती हैं तो अपने मर्जी के अनुसार रहती हैं मोस्टली, और दुनिया वाले भी उनको सपोर्ट तो करते हैं। तो कुमारों के बारे में आपने देखा होगा, पहला तो पेरेंट्स की इच्छा क्या रहती, इवन ज्ञानी परिवारों को भी मैंने देखा है कि उनकी इच्छा क्या रहती है कि लड़की तो मेरी ब्रह्मा कुमारी बन जाए, लड़का भले शादी करके घर में बहू लाए ताकि मेरा काम चलता रहे, है ना। तो अगर कोई कुमार जो ज्ञान में चलता है तो अपने बल पे चलता है अधिकतर, है ना, और उसमें भी अगर समर्पण होता है तो मोस्टली अपने बल पे चलता है, करता समर्पण होता है, उसको उसके पेरेंट्स समर्पण होने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। कुमारियों को भी फिर भी प्रोत्साहित करते पेरेंट्स, तुम सेंट पे चली जाओ अच्छा है, वहाँ देखो दीदियाँ कितनी अच्छी हैं, लेकिन कुमारों को लगभग कोई इतना प्रोत्साहित नहीं करता है। तो दादी जी को लगता है कि इनकी तरफदारी मैं कर दूँ
जी, इसलिए इसलिए दादी जी को कुमार का दादी कहते थे।
दादी जी अप्रिशिएट करती थी कि कुमार त्याग करके पेरेंट्स को संतुष्ट करके समर्पित होते हैं और सेंटरों पे भी इतनी सेवाएं करते हैं, ऑलराउंड सेवाएं कुमारों की होती हैं, चाहे घर का सेंटर पे भोजन भी बनाना है तो कुमार बना पाते हैं, कहीं सेवाएं करने बाहर जाना है तो बहनों के साथ चलते हैं, और फिर आप कितना भी मान लो मैं पुराना कुमार हूँ ज्ञान में लेकिन छोटी बहन के साथ जाऊँगा तो भी लोग छोटी बहन को ही हलवाए करेंगे ना, उनको ही पूछेंगे, तो कुमार को तो पूछेंगे नहीं। तो ये सबसे बड़ा दादी को लगता है देह अभिमान का त्याग कुमार करते हैं, तो इसलिए कुमारों को अप्रिशिएट होना चाहिए।
एक बार बाबा ने बोला था कि बहनें जो है जल्दी दीदी दादी बन जाती है लेकिन भाई लोग जो है दीदी दादा नहीं बन पाते, क्योंकि वो जीवन भर सेवादारी बन करके रहते हैं, इसलिए दादी जी जो है कुमारों का बहुत ध्यान रखती थी, इसलिए कुमार का दादी। मैं जानना चाहता हूँ भाई जी की इतना विशाल यज्ञ, इतना बड़ा परिवार, चाहे मधुवन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर, देश विदेश के भाई बहने, इतनी दीदियां, सबको संभालते हुए भी मैंने दादी जी की अनेक विशेषताओं में एक विशेषता देखा, वो सदैव लाइट रहती थी, सदैव हल्का रहती थी। इसके पीछे क्या सीक्रेट है? आज घर में अगर चार लोग रहते हैं तो घर का जो मुखिया बहुत बोझिल रहता है, सेंटरों में भी कई बार हम देखते हैं थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन दादी को हमने देखा सदैव लाइट, सदैव हल्का। क्या ऐसी सीक्रेट थी दादी के अंदर जो दादी सदैव हल्का रहती थी और जिससे हम सब अपने घर परिवार वाले लोग भी उसके जीवन से इस क्या विशेषता से अपने घर में सीख सकते हैं?
मेन बात है कि पहला तो बाबा करावनहार है, मैं हेड नहीं हूँ, हेडक मुझे लेने नहीं है, बाबा करा रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात धीरज, क्योंकि कई प्रेरणाएं आती हैं आपको कि ये होना चाहिए, लेकिन सामने वाली धरनी या सामने वाले व्यक्ति उस प्रकार के लिए तैयार नहीं अभी, तो धीरज रखना इस बात के लिए कि चलो आज नहीं हो रहा है तो कल हो जाएगा, ये दादी की बड़ी विशेषता थी। और उसके बाद आता है ट्रस्ट कि ये जो मेरे बच्चे हैं जिन्होंने अपना जीवन दिया है, चाहे मधुबन में है चाहे सेंटर पे हैं, ये मेरे साथ हैं, ये मेरी भुजाएं हैं, आज नहीं कर पा रहे हैं तो कल कर लेंगे। लेकिन दूसरों के ऊपर ट्रस्ट रखना, देखो आप सेंटरों पे छोटी छोटी बहनें हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट रखे, उनको उनके ऊपर बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां दी हैं दादी ने। और कई ऐसे कार्य होते हैं जहां दुनिया वाले भी समझते हैं कि इन कुमारियों की छोटी छोटी बहनों की इतनी हिम्मत है कि वो चलाते हैं। तो ट्रस्ट रखना दीदी का दादी का पहला जैसे विशेषता रही। मान लो बड़ा प्रोग्राम है और किसी ने कह दिया कि दादी ये शंकराचार्य आ रहे हैं तो साउंड सिस्टम ऐसा चाहिए, तो दादी का ये रहता था कोई बात नहीं, मुझे तो माइक देता है तुलसी, तो शंकराचार्य को भी वैसे देना होगा, इसमें क्या बड़ी बात है। तो ट्रस्ट कि ये संभाल सकता है, ये बहन ने जिम्मेवारी बाबा ने उसको निमित्त बनाया तो बहन संभाल सकती है। तो ऐसे दादी अपने आप में तो करती ही थी प्रोग्राम बड़े बड़े, लेकिन क्रिएटिविटी में बहनों को आगे करके सेंटरों से प्रोग्राम करवाना, ये दादी की विशेषता रही है। तो और फिर अगर कुछ काम नहीं भी हुए हैं ठीक है कोई बात नहीं, नहीं हुए तो अगली बार हो जाएंगे, है ना। और बाबा का सहयोग तो बाबा को उनके ऊपर था ही था हाथ। तो लाइट रहना के लिए पहला तो जैसे मैंने कहा ट्रस्ट, क्योंकि मोस्टली भाई बहन क्या होता है कि किसी को प्रोग्राम दे भी देते हैं ना कि आपको ये करना है, फिर पूछते रहते हैं, देखते रहते हैं किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया। दादी जी ने प्रोग्राम दे दिया, निश्चिंत हो गए, क्लास में बैठे हैं, प्रोग्राम दे दिया कि ये भोजन बनेगा तो बनेगा ही, दादी को विश्वास है ना। तो उस कारण से क्या है कि दादी का ट्रस्ट होने के कारण जो सामने वाले को जिन्होंने एक्सेप्ट किया है सेवाओं को, वो भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनको भी बाबा का सहयोग अनुभव होता था। तो मेन बात है ट्रस्ट और पेशेंस दादी जी की विशेषता थी, और इस कारण से जो दादी जी लाइट रहते थे। और अगर कुछ नहीं भी हुआ तो ठीक है कोई बात नहीं, हुआ नहीं हुआ, इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा। तो सफलता क्यों नहीं हुई उसके लिए दादी ने बाद में अपना ध्यान रखा कि क्यों नहीं हुई उसका पता करें, लेकिन अपसेट नहीं हुई जी। दादी जी की विशेषता रही कि किसी भी बात में अपसेट नहीं हुई, चलो अभी बात नहीं हुई बनी, बाद में अलग से बात कर लेंगे, समझो अपन कोई मीटिंग कर रहे हैं और किसी का मत नहीं है दादी ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, कुछ दो मत हो रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए एक दिन के लिए उस मीटिंग को पोस्टपोन करके अगले दिन फिर से मीटिंग करेंगे, ताकि अगर होना है वो काम तो होगा, नहीं तो सबकी राय एक जैसी होगी दादी यहाँ वो बाइक सही कह रहा था नहीं होना चाहिए, या उस भाई को भी क्यों नहीं कहे होना चाहिए, ऐसा बातचीत करके एक्सप्लेन करके यस होना है तो यस हो जाएगा। तो दादी जी को ये नहीं था कि मैंने कहा है तो होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और इस प्रकार का दादी को उस प्रकार का ईगो नहीं था, निरहंकारी जो थी दादी, और जो भी हुआ नहीं हुआ ठीक है आज नहीं तो कल होगा
जी। बहुत सुंदर बात सुना रहे हैं भाई जी। मुझे एक घटना याद आ रही है आपका बात सुनते सुनते कि एक बार बड़ी दादी को संकल्प आया कि बड़े बड़े प्रोग्राम करो, मेगा प्रोग्राम करो सब जोन वालों को। तो मुझे याद है सबसे पहले पूछा गया कि कौन कर सकता है, तो हमारी आदरणीय सरला दीदी जो गुजरात जोन की इंचार्ज रही, साकार बाबा मम्मा की पालना में पली, और दीदी ने कहा कि दादी मैं करूंगी। तो पहला जो बड़ा प्रोग्राम 1,00,000 का प्रोग्राम वो गुजरात में अहमदाबाद में हुआ था, और उसके बाद एक प्रथा चालू हो गई। तो जो आप सुना रहे हैं कि दादी को बहुत विश्वास रहता था, ट्रस्ट रहता था अपने टीचर्स के प्रति, भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति, इवन जो गृहस्थी माताएं भाई मिलते थे उनके प्रति भी दादी को बहुत विश्वास रहता था। और दूसरी वजह से आपने बताया बहुत लाइट रहती थी, क्योंकि सदैव दादी के मन में यह रहता था कि मैं निमित्त हूँ, बाबा करण करवाना रहे। एक बार भोपाल गई थी दादी और पत्रकारों ने पूछा, दादी इतने बड़े यज्ञ को आप चलाती हो, आपको हेडेक नहीं होता? तो दादी ने बहुत सुंदर जवाब दिया था, जो हेड होता है उसको हेडेक होता है, मैं हेड नहीं हूँ, हेड शिव बाबा है। तो कितना सुंदर एक ट्रस्ट का भाव था कि करण करवार बाबा है, और उसके कारण से दादी सदैव लाइट रहती थी। दादी जी को तीन प से बहुत प्यार था, तीन प, और वो तीन प है पढ़ाई, परिवार और पिकनिक। दादी को जैसे आप सुना रहे हैं, दादी बिल्कुल जैसे मुरली सुनाती थी तो ऐसा लगता था जैसे साक्षात सरस्वती आ गई है, और दादी मुरली में ही सारा देश विदेश का समाचार सुना दिया करती थी। तो पढ़ाई से बहुत प्यार, परिवार से बहुत प्यार, जिस प्रदेश के लोग आए, जहां के लोग आए, उनको क्या चाहिए उसी तरह से खाना खिलाना। और तीसरा, जो मुझे याद है अकाउंट का प्रोग्राम जो ऊपर हुआ करता था मधुबन में, तो थोड़ा भी समय मिलता था, दादी कहती थी चलो सबको पीस पार्क खेले, चलो पीस का पार्क में क्रिकेट खेलेंगे, पीस पार्क में पिकनिक होगा। तो ये तीन पासे बहुत प्यार था, आपने बहुत नजदीक से देखा है तुलसी भाई जी।
जी ऐसा है कि जो बाबा के यज्ञ में आते हैं, दूर दूर से आते हैं, तो हमारे भोली दादी जी की विशेषता थी कि उनके बारे में जानकारी रखना कि उनको क्या अच्छा लगता है। तो मोस्टली भोली दादी जी भी इस बात का ध्यान रखे, वो चीज़ें पहले से मंगवा के रखते थे, है ना। जैसे गर्मी का मौसम आया है तो गर्मी के मौसम में ठंडाई चाहिए इस प्रकार का, तो उसका मटेरियल है कि नहीं है, है ना, तो वो चीज़ कहाँ से आती है। जैसे दादी जी को मालूम होता था कौन सी चीज़ कहाँ सस्ती मिलती है, कहाँ से आती है, है ना। दाल का, दाल चाहिए तो दाल कहाँ से सस्ती आती है, गेहूँ चाहिए तो गेहूँ कहाँ से आता है, ये सीजन में क्या होना चाहिए, मंगवाना चाहिए, उसके लिए पैसा कितना है रखना है, तो इस प्रकार की दादी जी की विशेषताएं थी। तो जैसे आप पढ़ाई के शब्द कहें तो हम सब जानते हैं दादी जी के पास मूली रहती थी, और दादी जी क्लास में सुनने से पहले दो तीन बार पढ़ चुके होते थे। मतलब शाम को 6 बजे दादी जी के रूम में अगले दिन की मूली पहुंचती है, तो उसके बाद बीच बीच में जब भी दादी को टाइम मिलता वो पढ़ लेती हैं। कोई समय था कि दादी जी के पास जो और बहनें जाती थी रात को मिलने के लिए, तो वो पढ़ के सुनाती थी दादी जी को आने वाले कल की मूली, या तो दादी जी खुद पढ़ के सुनाते थे। तो एक तरह से वो हंसी हंसी में कहते हमारी छोटी गीता पाठशाला चल रही है। और उसके बाद दादी जी को कभी भी बीच में आँख खुलेगी और या नींद नहीं आ रही या कोई भी कारण से, गर्मी के कारण या कोई कारण से, तो दादी जी मूली पढ़ना शुरू कर देते थे, क्योंकि दादी जी की जो खिड़की थी उससे हमें कई बार देखने को मिलता था, या पहरे वाला जो जो ऑन सिक्योरिटी ड्यूटी होता था वो बताता था कि वहाँ दादी जी और मोहिनी बहन का रूम एक ही रूम था दोनों पांडवपुर में। तो खिड़की से दिखता था कि एक छोटा सा टेबल लैंप है जो ऑन होता है, दादी मूली पढ़ रही हैं ताकि मोहिनी बहन को डिस्टर्ब ना हो। तो लेटे लेटे या थोड़ा सा उठ के ऐसे मूली पढ़ रही हैं। तो मूली से दादी को बहुत प्यार था, और फिर सवेरे योग के बाद दादी मूली पढ़ के पढ़ते थे, उसके बाद क्लास में आके सुनाते थे मूली। और जब जब दादी को कुछ ऐसा हुआ कि दादी जी का मन डिसीजन नहीं ले पा रही या कुछ कोई भी कारण है, तो दादी मूली हाथ में उठा देती पढ़ने थी। तो कभी कभी उनको उससे भी उनको टचिंग मिल जाती थी डिसीजन लेने में, ऐसा दादी का अनुभव है। तो पढ़ाई से प्यार तो है ही है, क्योंकि मधुबन में ही अगर पढ़ाई से प्यार नहीं होगा तो और भाई बहन कहाँ पढ़ाई करेंगे, है ना। तो मधुबन में दिनचर्या क्लासेस की वो सब टाइम पे चले ये भी ध्यान रहता ही था। मन और दादी जी इसमें भी सहयोगी थे दादी जी के, तो मन और दादी की ड्यूटी थी क्लासेस अरेंज करना, कौन कराएगा ये सब। तो पढ़ाई से तो प्यार था ही था, और जो आप कह रहे पालना की, वो तो आपने जैसे बोला कि कुमारों के लिए दादी ने बोला, तो ऐसे ही सबके प्रति दादी जी की पालना रहती थी। कई बहनें अभी जो सेंटरों पे इंचार्जेस हैं, मेनली जैसे बहन बैठी हैं सामने, तो वो छोटे छोटे आए थे, बच्चों के प्रोग्राम से आए थे कई बहनें, लेकिन दादी जी का प्यार उनको आगे बढ़ाता गया और बाद में उन्होंने कॉलेज भी किया, लेकिन दादी से कनेक्टेड रहे, सेवाओं में आते रहे हैं कुमारी जीवन में। आज बड़ी बड़ी दीदियां हैं वो, और जोन सब जोन संभाल रही हैं। हमारे सुख शांति की नेहा बहन है, ममता बहन जो अभी कुमारियों की ट्रेनिंग कराती हैं, वो भी छोटे बचपन से मधुबन की पालना में पली हैं। तो ऐसे कई बहनें हैं जो बचपन से इस बच्चों के प्रोग्राम से आई, लेकिन अभी बहुत बड़ी दीदियां हैं। क्यों? क्योंकि कुछ भी उनके मन में आया तो दादी जी से पूछा, फिर ली राय ले ली, और दादी जी ने भी उनका पूरा ख्याल रखा, जिस कारण से उनको इतना प्यार मिलता रहा कि उनके द्वारा त्याग सहज हो गया। क्योंकि जैसे गुजरात से आप आते हैं तो गुजरात का भोजन अलग होता है, और अगर उसे गुजरात की बहन को अगर राजस्थान में भेजा जाए तो बहुत अंतर था। वो अभी फिर भी कम है, क्योंकि पूरा भारत हमारा एक दूसरे सीख रहा है हर चीज़ में, लेकिन आप उस समय बहुत अंतर हुआ करता था। अगर कोई गुजरात की बहन को नॉर्थ में भेजा जाए, पंजाब भेजा जाए, राजस्थान में भेजा जाए, तो उतनी जो राजस्थान के सेंटरों पे इतना कुछ सहूलियतें नहीं हुआ करती थी, तो फिर भी वो बहनें त्याग कर पाईं। क्यों? कि दादी जी का प्यार था, दादी जी ने भेजा है ना, तो ज़रूर मुझे वहाँ सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार की पालना दादी जी की रही कि दादी ने कहा, मानो सामने वाले को एक बल महसूस होता है था उस चीज़ का कि दादी ने भेजा है, माना हुआ ही पड़ा है। तो ये पालना का जी रहा ही, जैसे आपने भोजन वगैरह का भी कहा, जैसे फॉरेनर्स आते हैं तो फॉरेनर्स को क्या अच्छा लगता है, जैसे वो आने से ब्रेड उनको चाहिए, तो ब्रेड पहले बनता नहीं था यज्ञ में, तो कोई भाई को जाके माउंट आबू में बेकरी से जाके ब्रेड बनाना सीख के आया। तो ब्रेड और जैम मैं समझता हूँ 80s में शुरू हुआ, 81-82 में शुरू हुआ, और दादी जी का जो छोटा सा किचन था उसमें ही पहले वो ट्राई किया ब्रेड बनाने का भाई ने, और वहाँ से फिर आज तो हमारे पास जैसे ब्रेड की फैक्ट्री जैसे हैं। तो उसमें ब्रेड जैम, ये फॉरेनर्स का सीज़न आ रहा है तो हमें ये चीज़ें रेडी करनी हैं, तो हर चीज़ के लिए दादी जी का ख्याल चलता था। और जो पिकनिक की बात कही है आपने, तो एक्चुअली पिकनिक शब्द अभी हम देते हैं, उसमें था एक्सर्शन, एक्सरसाइज टाइप करने का, तो बैठे बैठे काम करते हैं तो चेंज भी चाहिए थोड़ा सा। तो दादियाँ बोलती थी कोई मैदान में जाएंगे, वहाँ खेलेंगे कूदेंगे, और उन दिनों के अमाउंट में इतने लोग नहीं हो रहा करते थे, तो दादियाँ भी फ्रीली खेल पाते थे, या तो पीस पार्क, तो नाम बाद में पड़ा, उससे पहले वो ओरिया ग्राउंड कहलाते थे हम लोग, और वहाँ आम के पेड़ होते थे, तो दादियों सहित हम शब्द आम तोड़ के खाते थे, एंजॉय करते थे, तो उसको पिकनिक शब्द आज हम देते हैं। उस समय ये शब्द कम हुआ करता था, एक्सर्शन या एक्सरसाइज करके आते हैं। मुझे याद है कि मनो दादी जी को शुगर हुई, तो पिकनिक पे जाते हैं तो हलवा तो होता ही है, तो हलवा खाते हैं, तो फिर दादी बोलते अभी हलवा खाया ना, शुगर खाया ना, तो थोड़ा सा और एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो दादी खुद ही वो गोला बना के उसमें वॉलीबॉल खेलना, डॉज बॉल खेलना, और या तो स्वर्ग आ रहा है, पानी किनारा, इस प्रकार के कोई छोटे छोटे गेम्स ऐसे करके दादियाँ खुद भी उसमें करते थे, और या तो रास होता था कोई गीतों पे हम जी रास करते।
तो इस तरह से दादी का रोल बच्चों के साथ बच्चों जैसे, बड़ों के साथ बड़ों जैसे, टीचरों के साथ टीचर जैसे, गृहस्थियों के साथ गृहस्थी जैसे, तो एक सबको आगे बढ़ाने की एक कला दादी के अंदर थी।
मेन बात है जैसे चेंज चाहिए ना
जी,
और थकावट उतर जाना, जैसे कोई कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस बहुत कारोबार होता था उस समय, आजकल तो एक रूटीन हो गया है तो हर चीजें सेट हैं, लेकिन उस समय ओम शांति भवन में कॉन्फ्रेंस होना मना बड़ी बात होती थी, इतना अकोमोडेशन वगैरह भी नहीं हुआ करता था, तो बहुत सारी सेवाएं होती थी जो काफी समय पहले से होती थी। तो एक कॉन्फ्रेंस के बाद एक पिकनिक टाइप होना ही चाहिए। कल भी मैं 91 की एक मूल्य सुन रहा था जुलाई की, तो दादी ने उस मूल्य में बोला कि अच्छा आज ब्रह्मा भोजन भी रखेंगे, पिकनिक भी करेंगे। क्यों? क्योंकि जो अकाउंट की सीजन चली 3 मास, उस समय अकाउंट की सेवा के लिए भी भाई बहन जो जानकार थे अकाउंट के वो आते थे पांडापोन में, और बहनें भी अब सेंटर का अकाउंट देने के लिए आते थे। और वो उस समय कंप्यूटराइज इतना हुआ नहीं था तो काफ़ी टाइम लगता था, तो दिन रात कई बार वो करके बैठ के वो कारोबार करते थे। तो बोले अकाउंट वालों ने 3 मास लग के सेवा की है, उनको भी रिफ्रेशमेंट देना है, और जो पार्टियां आई हैं उनको भी रिफ्रेशमेंट देना है। 2-4 बातें दादी ने गिनती कराई दी कि इसलिए आज ब्रह्मा भोजन खा सका है। और दादी जी को अच्छा लगता था वो मीन ब्रह्मा भोजन में क्या क्या बनना है वो बताना तो उनको खुशी होती थी इस प्रकार का बता के। क्योंकि कहते हैं भाई कोई जैसे मान लो आइसक्रीम है, आइसक्रीम तो कॉमन है, आइसक्रीम खाते भी हैं भाई बहन बच्चे, लेकिन बच्चों के प्रोग्राम में आइसक्रीम देना है तो अच्छा आम तो तोड़े होंगे बच्चों ने, किस किस ने आम तोड़ के खाए, इस प्रकार से बच्चों को रिफ्रेश करके अच्छा बाकी क्या रहा, सबको सब चीजें तो खाने को मिली, बाकी क्या रहा, आइसक्रीम नहीं मिली है ना, आइसक्रीम नहीं मिली ना, आज आइसक्रीम खिलाएंगे। तो आइसक्रीम तो छोटी सी चीज है, लेकिन जो दादी का बोलने का तरीका होता था उसके बाद जो आइसक्रीम खाने का मजा आता था वो अलग ही होता था। इस प्रकार से दादी जी का रिफ्रेश करने का तरीका होता है।
दो छोटे छोटे दो प्रश्न और है। एक प्रश्न ये कि दादी सभा में बोलती थी कि मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, ये संसार में बहुत गिने चुने लोग होंगे जो ये सभा के बीच में बोल सके कि मैंने अपने लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला। दादी के अंदर ऐसी क्या वो पावर थी, क्या ऐसी वो आध्यात्मिक शक्ति थी कि मैं तो यहाँ भी हारमोनी हाल में कई बार दादी को देखता था, तो जब दादी बोलती थी कि मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला तो पूरा सन्नाटा हो जाता था, और बहुत कोई मिलते ही नहीं थे बिना झूठ बोले वाला। तो क्या ऐसी हम सबको सीखने को मिलता है दादी के इन शब्दों से कि मैंने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला।
ऐसी दादियों का ये जैसे रहा कि अगर कुछ नुकसान होता है तो बाबा का नुकसान है। और जैसे हमारे प्रेम मसन भाई एक चुटकुला सुनाते थे कि अंगद को बुला भाई आपने तो बोल दिया कि अगर ये हटा दो तो सीता आपकी हो जाएगी, तो तुमने किस भाव से बोला कि भाई हटा दो तो वो अंगद को पूछा गया तो बोले मेरा काम था पांव रखना, बाकी काम था उसका जिसकी सीता है ना। तो अधिकतर वो ऐसे चुटकुला जरूर सुनाते थे अपने क्लास में, और अच्छा भी लगता था कि भाई मेरा काम है सेवा करना, बाकी सफलता न सफलता उसकी है ना। तो सच बोलने से मोस्टली जो हम लोगों को डर रहता है ना कि सच बोलने से ये नुकसान हो जाएगा, सच बोलने से मेरी इज्जत चली जाएगी, सच बोलने से मेरा करियर खराब हो जाएगा, सच बोलने से मैं लोग क्या कहेंगे, जो लोग क्या कहेंगे, ये सब जो बातें हैं मोस्टली जो झूठ बोलने का बचपन से सीखा है हम बच्चों ने उस कारण से ही कि भाई मेरा क्या होगा अगर से इन्होंने सच के रिटायर में कुछ रिएक्शन कर दिया तो मुझे नुकसान क्या क्या होगा, और इस कारण से झूठ बोलते हैं या छुपाते हैं। तो दादी जी को तो इन चीज़ों का था नहीं, भाई नुकसान होगा तो उसका मेरी कोई बेइज्जती वाली तो बात नहीं है। तो इसलिए दादी जी को झूठ बोलने की शायद आवश्यकता नहीं पड़ी होगी कहीं, या तो दादी जी को मालूम ही नहीं झूठ क्या होता है तो युक्ति युक्त रही भी होंगी तो दादी को ये नहीं लगता होगा कि मैंने ये झूठ बोला है, तो इस प्रकार का मैं समझता हूँ।
तो सदा तो साफ दिल सच्चा दिल रही। लास्ट प्रश्न है भाई साहब, 2007 के बाद जो बाबा के बच्चे बने हैं, जिन लोगों ने इस जन्म में दादी जी को साकार में नहीं देख पाए, ऐसे हजारों लाखों बच्चे बाबा के, वो सब ये जनरेशन चेंज हो रहा है, दादियों का एक प्रकार से हम अभी वर्णन और उनकी चरित्र और चित्रण को ही सुन पाते हैं, कैसे अनुभव करें दादी जी के चित्र और चरित्र को जो बाद में ज्ञान में आए हैं।
वैसे तो मैंने पहले बताया कि जो फेसबुक हैं, यूट्यूब हैं, या दादियों के बारे में जो हम सुनते हैं उसको विजुलाइज करें, और दादी जी के तो मटेरियल काफ़ी अवेलेबल है इन चीज़ों के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम दादियों की विशेषताएं सुनते हैं उसको हम धारण करें, जैसे पढ़ाई की बात कही आपने जी, मूल्य से प्यार की बात कही आपने, या तो अपने को डिटेच रखने की बात कही, तो अपन रहेंगे उस प्रकार से तो ऑटोमेटिकली उनके गुण हमारे में आते जाएंगे और सहज ही हम दादी जी को अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि जब आपके जीवन में चेंज आता है तो लोग पूछते हैं कि ये परिवर्तन कहाँ से आया। तो जैसे अपन कहते हैं कि भाई बाबा के घर में जाते हैं तो हमारे से ये बुराइयाँ, ये मोटे मोटे विकार तो ऑटोमेटिकली छूट जाते हैं। जैसे अभी नशा मुक्त अभियान चल रहा है तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि और संस्थाएं भी ये कार्य कर रही हैं, लेकिन बाबा के यज्ञ का, बाबा के घर में जो आते हैं उनका सहज ही नशा छूट जाता है। तो वो कारण क्या है कि बाबा अतीन्द्र सुख अनुभव करवाते हैं तो हमारे जो इंद्रिय सुखों की इच्छाएं वो खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार जब दादियों के बारे हम सुनते हैं कि दादी जी की दिनचर्या थी या दादी जी पढ़ाई से प्यार था, पालना से प्यार था, तो हम अपने साथ में रहने वालों को प्यार दें, पालना दें, पढ़ाई की बातें करें और बातों के बजाय पढ़ाई की पालना करें। तो मैं समझता हूँ इस चीज़ को अपन आगे बढ़ा सकते हैं।
बहुत सुंदर अनुभव युक्त बातें आपने अपना कीमती समय निकाल करके हम सबको लाभान्वित किए। मुझे आशा है आप सबको दीदी दादी जी के जो चित्र और चरित्र हैं सबके सामने आ गए, सबके सामने आ गए। ठीक है, तो आपका एक बार पुनः बहुत 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 दिल से धन्यवाद। आपने अपना समय निकाल करके दीदी जी और दादी जी के बारे में सुनाए। अभी हम सभी लास्ट में 2 मिनट।
ओम शांति। चलिए बाबा की याद में मग्न हो जाते हैं। हमारे मीठे मीठे परमपिता शिव बाबा की याद में चलिए। आवाज से परी मधुर साज से भरी अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चियाँ सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां बच्चियाँ नूर समुंदर दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंद अंतर मौजों की मौज लेने का ये समा वो प्रेम डोर से खींचे वहां जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले उड़ चले उड़ चले आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया राहें देखी बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदु स्वर में वो बोले राहें देखी बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदु स्वर में वो बोले कुर्बान करके आ पुराना जहां सुन प्यार से पुकार वो शिवा शमा जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले उड़ चले उड़ चले आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया ओम शांति। थैंक यू।